हरे कृष्णा ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लेक्चर 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरु भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य है हमारा कि हम आज से श्रीमद्भागवत महापुराण की भूमिका पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आप जो मंगलाचरण में श्लोक उच्चारण करते हैं उनके विषय में कुछ बात करेंगे। पहले वैसे तो सारे श्लोक संबद्ध पहले बात कर चुके हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन से मेरे हृदय के अंधकार को खत्म किया, जिसकी वजह से मैं आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की विधि को प्राप्त कर चुका हूँ और कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके भगवान को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आगे हम पढ़ते नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 4 इसका ये श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ते हैं उसका पाठ करते हैं तो पहले मनुष्य को चाहिए कि वो परम पुरुष भगवान श्री नारायण नमस्कृत्य और नरम यानी नर नारायण ऋषि और नरोत्तम ऋषि को देवीम सरस्वती माता को व्यास जिन्होंने ये सारे शास्त्र लिखे उनको उन सबको प्रणाम करें अपना नमस्कार करें ताकि वो सब अपनी कृपा हम पर करें और हम श्रीमद् भागवतम के अद्भुत और आध्यात्मिक वचनों को श्रवण एवं ग्रहण कर सकें। तो ये श्लोक नंबर चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 4 है। उसके बाद हम एक श्लोक पढ़ते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। नष्ट का मतलब होता है खत्म हो जाते हैं, प्रायेषु मतलब तकरीबन सारे। अब तकरीबन सारे का मतलब होता है हो सकता है एक आध ना हो लेकिन तकरीबन सारे 99.9% ऐसा इसको बोल सकते हैं। अभद्रेषु, अभद्रेषु का मतलब होता है जो समस्त अमंगल जितनी भी बुराइयां हैं जितने भी अभद्र हैं जितने भी दुष्परिणाम हैं वो सब नष्ट हो जाते। कैसे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। यदि आप नित्य माना कंटिन्यूअस श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा करते हो, सेवा भागवतम जो शास्त्र है उसकी सेवा हम कैसे करते हैं, उसको अध्ययन करके उसका पाठ करके उसको श्रवण करके उसकी सेवा की जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नित्यम भागवत सेवा। अब दो प्रकार से भागवत की सेवा होती है। एक हमारे पास दो प्रकार के भागवत हैं, एक तो शास्त्र भागवत है और एक व्यक्ति भागवत है। शास्त्र भागवत की सेवा तो श्रवण एवं उसको अध्ययन करने से की जाती है और जो व्यक्ति भागवत है वो यानी कि वो जीव वो व्यक्ति जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की आदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है यानी शुद्ध वैष्णव जो भक्त होते हैं वो चलते फिरते भागवत होते हैं। वो जब बात करते हैं तो कृष्ण के विषय में बात करते हैं और भागवत पढ़ के भी हम क्या सीखते हैं, कृष्ण के विषय में ही बात करते हैं। तो फिर ऐसे ऐसा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, ऐसे व्यक्ति भागवतों की और श्रीमद् भागवतम की श्रवण एवं अध्ययन से क्या होगा, हमारे जितने भी अभद्र हैं जितने भी अमंगल हैं जितने भी संकट हैं वो सबका नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि अभद्रों का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपराधों का अमंगल का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो आगे बता रहे हैं भक्तिर भवति नैष्ठिकीम। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, भक्तिर भवति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम का मतलब होता है अविचल भक्ति आपको प्राप्त होगी। किसकी? भगवती उत्तम श्लोक के, ऐसे भगवान जिसकी सराहना, ऐसे भगवान जिसकी उपासना और प्रशंसा उत्तम श्लोकों के जरिए की जाती है और पुण्य श्लोकों के जरिए जिस भगवान की उपासना की जाती है उनकी अविचल भक्ति आपको प्राप्त होती है यानी भगवान श्री कृष्ण की नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने से एवं भागवत यानी शुद्ध भक्तों की सेवा करने से आपको भगवान के लिए रुचि उत्पन्न होती है, आपके हृदय में भगवान के प्रेम का संचार होने लगता है। यदि हम भागवत महापुराण का नित्यम का मतलब होता है कंटिन्यूअस उसको श्रवण करते रहते हैं उसको अध्ययन करते रहते हैं। वास्तव में भक्तों यही तो इस मानव जीवन की परम सिद्धि है कि हम कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अपना प्रेम विकसित कर सकें और वो तभी पॉसिबल है तभी संभव है जब हम कंटिन्यूअस भागवत श्रवण करते हैं और भागवत भक्तों का संग करते हैं। बस एक ही विधि है, उसी से क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवता, भगवती उत्तम श्लोक की भक्तिर भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति तभी उत्पन्न होगी जब हम कंटिन्यूअस भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे और भक्तों की का संग करेंगे। और शास्त्र कहता है पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता कि संत यानी संत समागम जो है वो बहुत कठिन, बहुत सारे पुण्य जब एकत्रित हो जाते, पुण्यों का बहुत बड़ा पुंज जब आप बना लेते हो तब कहीं जाके आपको संत के दर्शन होते हैं। लेकिन ये श्री प्रभुपाद की हम पर असीम कृपा है कि श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप में हमें अपना सानिध्य प्रदान किया है और हम श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम भूमिका से स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरू में लिखा हुआ है ना जो भूमिका का पोर्शन, उसमें सारा श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 1 के विषय में बताया गया, तो हम उसके साथ इसको रिलेटेड करके पढ़ेंगे। आप वो भी खोलोगे और ये भी, और इस तरह से हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद प्रथम, स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। यह श्रीमद् भागवतम महापुराण का सबसे ज्यादा अहम श्लोक है। और जिस तरह से हम श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे थे ना कि अंतिम श्लोक 18.66 जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है, तो वहाँ ये समझ में आया कि वो चरम श्लोक ये है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का अगर कोई चरम श्लोक है जिस पर आधारित है पूरा शास्त्र, तो वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण का कैंटो 1 चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 1 और टेक्स्ट नंबर 1। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें पहली लाइन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत्यंत ही सुंदर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा 10वें स्कंद में, है ना। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं व्यास देव जी जब उन्होंने भागवत महापुराण स्टार्ट किया है। तो बताते हैं आगे श्लोक को देखिए। जन्माध्यस्य यतो वयादितरतश चाधीश्वभिज्ञः स्वराज तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुहुयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का लक्षण बताए गए हैं। तो दो लक्षण हैं भगवान श्री कृष्ण के, एक तो तटस्थ लक्षण है और दूसरा स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या है जो कि बताया गया शुरू से लेकर जन्मादस्य यतोन वयादि तरतस्, जन्मादि यानी जन्म पालन और मृत्यु जो कुछ भी है जो कर रहा है वो कौन है। और इसके बाद जन्मादस्य यतोन वयादि तरतस्, अन्वया का मतलब होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, और इतरतस्य मतलब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है संसार में चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है अर्थेषु भिज्ञः, यानी भगवान जो है उसको जानता है। अभिज्ञ का क्या मतलब होता है, वो सबको जान रहा है भगवान श्री कृष्ण, पूर्णता उससे अवगत है। और स्वराट, स्वराट का मतलब होता है खाली उनको जानता ही नहीं है बल्कि यह स्वराट मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज जो भगवान की ये जो व्यवस्था है उसको खाली जानता नहीं है बल्कि पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवान को अपनी इस प्रकृति को चलाने के लिए किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। हर एक जो कीड़ा होता है ना, जैसे अगर यहाँ से करोड़ों मील के फासले पर एक बहुत बड़ा पर्वत हो, उसके पर्वत के नीचे अगर छोटा सा एक कीड़ा बैठा हुआ होता है तो उस कीड़े को भी भगवान उसके विषय में भी जानते हैं और उसको भी वहाँ पर जब तक उसके जीवन है तब तक भोजन इत्यादि भगवान वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। भगवान ही है जो पत्थर के अंदर के कीड़ों को भी मतलब सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो स्वराट है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैंने अभी इतना ह्यूज संसार तो बना दिया है, अब मैं उसको पालन नहीं कर सकता हूँ तो किसी और को बना दे कि भाई आप ऐसा करो, उसका पालन आप करो, वो उधर तक मेरी रसाई नहीं है या मैं वहां पर नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं 9.10 में, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये प्रकृति मेरी आंख के इशारे से चलती है। और आगे यहाँ तक ही नहीं कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये मतलब जो सबसे पहले जो जीव हैं उन ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदय, उनको हृदय में ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और ऐसे भगवान जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और वो ब्रह्मा जी भी उनकी लीलाओं को देख कर मोहित हो जाते हैं, मोहयंती यत् सूर, यहाँ बड़े बड़े देवता भगवान की इन लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मशा, कैसे मोहित हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। और उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण स्थायी रूप में प्रकट होते हैं, मतलब तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मशा, यानी कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो अवास्तविक है, मतलब उसकी कोई रियलिटी नहीं है, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगता है। और आगे कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अतः मैं उन श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूप हो यानी सर्वथा मुक्त है, यानी वो इन सब चीजों से बिल्कुल मुक्त है। ये सब तो भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं, वो इन सब चीजों से मुक्त हैं, यानी कि मोह रूपों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने दिव्य धाम में, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम में निरंतर वास करते हैं। और मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि सत्यम परम धीमहि, वे सत्य हैं, परम सत्य हैं, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और उसी की यहाँ पर भूमिका में श्री गोपाल ने चर्चा की है कि ईश्वर की धारणा तथा परम सत्य की धारणा एक सी नहीं है, यानी कि परम सत्य और ईश्वर में क्या डिफरेंस है। आगे बताएंगे श्री गोपाल जी कि श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर प्रहार करता है, सत्यम परम धीमहि। देखो ईश्वर क्या है, ईश्वर की धारणा, आगे श्री बाबा जी बोलते हैं, ईश्वर की धारणा नियामक की सूचक है, तो परम सत्य की धारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की सूचक है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर की धारणा क्या है, नियामक की सूचक, यानी कि कोई ऐसा है जिसने ये सब सृष्टि को नियमित किया हुआ है, सही तरह से चला रहा है, कौन है वो। अब ईश्वर कोई भी हो सकता है, यानी कि जो बना रहा है, जो सृजन कर रहा है और जो उसको नियमित रूप से चला रहा है वो हो सकता है, तो ईश्वर कई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परम सत्य की बात हो रही है, सत्यम परम धीमहि, जो कि उनको भी बनाने वाला है, यानी यहाँ पर बताए स्रोत, मतलब परम सत्य की धारणा आश्रित तत्व या समस्त शक्तियों की चरम स्रोत का सूचक है। परम सत्य क्या है, जिसने सबको शक्ति दी है कार्य करने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, कभी ख्याल नहीं करना कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हो सकता हूँ, लेकिन परम ईश्वर यानी ईश्वरों के ईश्वर कौन है, कृष्ण, जिन्होंने मुझे, क्योंकि मैं सृजन कर रहा हूँ तो मुझे भी जिसने शक्ति प्रोवाइड की है, जो मेरी शक्तियों का स्रोत है, और तो वो भगवान श्री कृष्ण है। आगे कहते हैं, नियामक के रूप में भगवान के साकार रूप में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियामक है अगर तो उसका कोई ना कोई रूप होना चाहिए, क्योंकि नियामक निराकार नहीं हो सकता है ना, जो बनाता है, जो ऑर्डर करता है, जो सारा सिस्टम संभाल के रखता है वो निराकार नहीं हो सकता है। यहाँ पर कहते हैं निस्संदेह आधुनिक सरकार विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासक अध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि देखो गवर्नमेंट एक जगह पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करती है और जहाँ पर वो नहीं होती, जैसे जहाँ पर हुकूमत का वो स्वयं नहीं होता है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर भी उसके ही जो उन्होंने अहकाम जारी किए होते हैं, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं वही चल रहे होते हैं। जैसे अगर हमारा यहाँ का प्रेसिडेंट अगर कोई दूसरे कंट्री में है या दूसरे सिटी में, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चलते रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे भाई यहाँ पर है ना प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर हम वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। उस कंट्री के हर सिटी में वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो कि हुकूमत ने बनाए होंगे, जबकि वो प्रेसिडेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते हैं निस्संदेह आधुनिक सरकार विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार जो है वो कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासन का अध्यक्ष जो होता है तो व्यक्ति ही होता है। मतलब कोई ना कोई तो इंसान है, कोई ना कोई तो व्यक्ति है जिसने ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। अब वो यहाँ पर नहीं है, दिखता नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो सही ना कोई होना तो चाहिए। और सरकार का निराकार स्वरूप उसके साकार रूप के अधीन होता है, यानी कि जो कुछ उसने, अब वो वहां पर बैठकर अगर दूसरा कोई रूल फॉलो कर बता देता है तो यहाँ पर सबको वही वाला फॉलो करना पड़ता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को मानना पड़ता है, यानी कि जब नियंत्रण की बात आती है, जब कंट्रोल की बात आती है तो बेशक कोई ना कोई साकार अस्तित्व हमें ना उसके विषय में सोचना पड़ता है और उसको मानना पड़ता है। क्योंकि विभिन्न व्यवस्थापकों देव, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियमित होते हैं, अतएव ऐसे अनेक छोटी छोटी देवी देवता हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट उनको सौंप दिया जाता है देवी देवताओं को। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियामक जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, विभूति मत तत्व या शक्ति समतन नियामक कहलाता है। मतलब किसी के पास भी विभूति है, शक्ति संपन्न है तो वो नियामक कहलाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 41 में बताते हैं, यत् यत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवान्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक सफुलिंग मात्र से उद्भूत होती है, यानी कि जो कुछ भी ऐश्वर्यमय दिख रहा है, जो जो ईश्वर बनाए हुए हैं उनका भी स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर कहते हैं कि विभूति सत्व शक्ति संपन्न नियामक या देवता है, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है, यानी कि परम सत्य का क्या मतलब होता है? उसके जैसा और कोई ना हो। इसका प्रमाण बताया जाता है कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 11 में, वदन्ति तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम। अद्वयी मतलब दो न हो, अद्वयी एक दो नहीं हो सकते, उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान वो है जो एक ही है, वन मैन शो, यानी पूर्ण है वो, ज्ञान से पूर्ण है, शक्ति से पूर्ण है, जो अद्वैत ज्ञान है उसके समान दूसरा कोई नहीं है। कौन है वो? अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदनम, के वो एक ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं और उनके साथ और कोई नहीं हो सकता।
आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह श्रीमद् भागवतम परम सत्य का नाम है। श्रीमद् भागवतम के लेखक श्री व्यास देव सर्वप्रथम परम सत्य को सादर नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, अभी हमने पढ़ा ना, तो सबसे पहले श्लोक में वो परम सत्य को सादर नमस्कार करते हैं। अतएव परम सत्यम परम पुरुष है, देवगण या नियामक यानी अधिष्ठाता निस्संदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्य जिनसे समस्त देवतागण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं और परम पुरुष वही है। संस्कृत शब्द ईश्वर नियामक का सूचक है, लेकिन परम पुरुष ही परमेश्वर है। यानी कि देखो बहुत सारे देवता हैं जिनको ये नियामक की जो शक्ति प्रोवाइड करने वाले हैं वो परम सत्य है। ईश्वर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहा संस्कृत शब्द ईश्वर नियामक का सूचक है, लेकिन परम सत्य परम पुरुष ही परमेश्वर है। यानी ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, तो यह परमेश्वर परम चेतन पुरुष है। और चूंकि यह अन्यत्र किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करता, यानी कि वो स्वराट है, उसको किसी और चीज से, जैसे सूर्य कैसे होता है, वो सारे सितारों को तो अपना तेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सूर्य को तेज नहीं कोई देता, सूर्य के अंदर स्वयं अपना तेज है। उसी तरह यहाँ पर बताया गया कि वो अन्यत्र किसी स्रोत यानी कोई शक्ति प्राप्त किसी और जगह से नहीं कर रहा है, अतएव यह परम स्वतंत्र है। हमने पढ़ा स्वराट, ये स्वतंत्र है, उसको किसी और के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दूसरे देवी देवता होते हैं उनको जब भी उनको वरदान भी देना होता है, कुछ भी उनके ऊपर संकट भी आता है तो भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन कभी किसी शास्त्र में आपने ये नहीं देखा होगा कि भगवान को किसी का आश्रय लेना पड़े। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र चंद्र या वरुण जैसे देवताओं का अध्यक्ष कहा गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि भले वैदिक शास्त्र जो है वो दूसरे देवताओं जैसे इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवताओं का अध्यक्ष कहलाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष भगवान से वेदों के रूप में हुई। तेने ब्रह्म विदाय आदि कवये, आदि कवि भगवान ब्रह्मा जी जिसको भगवान कहा जाता है, जो कि सृष्टि के सृजन करता है, उनको भी ज्ञान किसने दिया, तेने ब्रह्म विदाय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी उन्हीं ने ज्ञान दिया था, उसी भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था जो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है 18.61, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। आगे बताते हैं वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। जो पहली लाइन है ना, अन्वयाद इतरतश चार्थे स्वभिज्ञः, यानी कि या तो इंग्रेडिएंट्स वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्टली वो बनाते हैं उसको, या एटलीस्ट जो ब्रह्मा जी ने बनाया है उसको इंग्रेडिएंट्स ब्रह्मा जी को वही प्रोवाइड करते हैं, और विज्ञः सब के विषय में जानते हैं, डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से भगवान हर चीज के प्रति विज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं और प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यक्ति जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, भले ही हमारी वस्तुओं के शरीरों या ब्रह्म, बहुत ही खास और सीक्रेट बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म व्यक्ति अगर हैं जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, यानी कि जो भी भगवान के अंश हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई बड़े कोई भी हस्ती हो, चाहे जीव, जो भी जीव हैं, भले ही सारी वस्तुओं के शरीरों या बाह्य स्वरूप के बारे में प्रत्येक बात का को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वरूप से जान ले, यानी कि जो भी ये जो है ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स के जो साइंसदान होते हैं, एक एक घास को उठा के देखते हैं उसके अंदर क्या है, और एक एक कीड़ों को जानकारी करते हैं, हर एक चीज को रिसर्च करते हैं, तो बोला भले उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से वो सब कुछ जाने, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों स्वरूपों के बारे में हर बात को जानते हैं, यानी कि वो तो सिर्फ उनके बारे में जानेंगे जो सामने उनके आएगा, लेकिन हर एक चीज के विषय में अंदर और बाहर से या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और प्लस अपने आप को सब कुछ, अपने आप के बारे में सब कुछ जानना, वो सिर्फ और सिर्फ परम पुरुष भगवान जो है वो समस्त सृष्टि को भी जानता है और खुद को भी जानता है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के ज्ञाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं 7.26 में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि न त्वं वेदन कश्चन। श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका था, वर्तमान में घटित हो रहा है और भविष्य में घटित होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीव प्राणियों को भी जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, दूसरे मुझे नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं अन्वयादि तरत जातिषु भीक्यः सरात। आगे बताते हैं जन्मादस्य, जो पहला शब्द है ना, यह सुझाता है कि समस्त उत्पत्ति पालन या संहार का स्रोत वही परम चेतन पुरुष है। जन्म आदि यस्य, यानी जन्म लेना, पालन करना, मृत्यु, उस सब का स्रोत कौन है, उस सब का करने वाला कौन है, वही परम पुरुष भगवान, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि वो परम सत्य है। यहाँ तक कि अपने वर्तमान अनुभव से हम जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि कोई जड़ हो अगर उसके अंदर आत्मा ना हो, कोई जड़ चीज हो, तो वो कभी भी अपने से कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे आप एक मोबाइल फोन ले लो, उसको कुछ भी करो आप, भले किसी तरह से उसको पोषण दो, लेकिन कभी भी ऐसा है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बैटरी चार्ज करो, ये करो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि उसमें से एक दूसरी मोबाइल फोन भी उत्पन्न हो जाएगी, नहीं ना। जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीव से उत्पन्न किया जा सकता है ना। हम हैं तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जड़ चीजें बना सकते हैं। उदाहरणार्थ जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक चल यंत्र के रूप में विकसित होता है, यानी कि क्या बनाते हैं, यानी कि जब एक जीव होता है तो क्या करता है, एक जड़ शरीर यानी कोई एक मशीन होती है, उसको एक चल यंत्र के रूप में विकसित करता है, उसको भी चलती हुई, जैसे हम गाड़ियां होती हैं हम देखते हैं कंट्रोलर से चल रही होती है, मोबाइल फोन होता है या कोई भी चीज होती है, आईपैड होता है, टैबलेट होता है, वो यूज मतलब वो चल रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है, एक ऐसा शरीर। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो तो वो शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अल्पज्ञानी इस शारीरिक मशीन को ही जीव मान लेते हैं, वो समझते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, लेकिन तथ्य तो यह है कि जीव ही शारीरिक मशीन का आधार है। वास्तव में जो आत्मा है वो इस जीव यानी इस जो जीव है वो इस मशीन को चलाता है। जीवित सफोलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। हमारे हृदय से जब आत्मा चली जाती है, जीव चला जाता है, तो क्या होता है, ये मशीन व्यर्थ होती है। उसी प्रकार समस्त भौतिक शक्ति का मूल स्रोत परम पुरुष है। ये जो भौतिक शक्ति हमें जो भी दिख रही है, चाहे वो देवता है, चाहे जो भी विभूति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि यदि विभूति यद सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तमेव अवगच्छत्वम, वो सब क्या समझो कि मेरी अंश, मेरी चमकती हुई किरणों का एक अंश है। मतलब भौतिक शक्ति का मूल स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और ये कौन बताता है, श्रभुपाद जी कहते हैं यह तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और आध्यात्मिक विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। सारे जितने भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर सर्व परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस संसार में जो चीज भी हो रही है उसका कारण गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही है। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्य श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ये उपदेश दिया है कि ब्रह्म तत्व यानी कारण है। अब जो ब्रह्म है, जिस महद ब्रह्म जिसको हम कहते हैं 24 तत्व, वो सब कारण है, ठीक है। जबकि यह विराट जगत एक श्रेणी यानी वर्ग है, उससे ये विराट जगत बनता है और जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल स्रोत है। अब जो भी संसार में आपको शक्ति मिल दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की वजह से है, जीवनी शक्ति, और भगवान को ही तर्क द्वारा परम पुरुष भगवान स्वीकार किया जाता है। जितने भी तर्क शास्त्र हैं, जितने भी ज्ञान है, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, वो भगवान को क्या सोचते हैं, वो भगवान जो है वो परम सत्य है। मतलब इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा की शक्ति से हो रहा है। इन जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों का मूल स्रोत है और भगवान को ही तर्क द्वारा परम पुरुष स्वीकार किया जाता है। और आत्मा को पावर कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। और परमात्मा के विषय में बताते हैं कि जितने भी तर्क करने वाले हैं, जो भी ज्ञानी हैं, वे भगवान को परम सत्य मानते हैं, क्योंकि आत्मा का स्रोत परमात्मा, आत्मा का स्रोत परमात्मा और परमात्मा का स्रोत भगवान है। अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक अपने दोनों ही अस्तित्वों को के कोने कोने को जानने वाले हैं, यानी कि सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान और जो कुछ भी हो रहा है कोने कोने में, हर एक चीज से विज्ञ जन्मादस्य यतोन वयादि तरतश चार्थेश्व विज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं। अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। अब ये जो साधारण मनुष्य हम जैसे होते हैं वो अपूर्ण है, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो उसको तो ये भी पता नहीं होता है कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वह भोजन तो करता है किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है या शरीर का किस तरह से पोषण करता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि भोजन तो बना दिया लेकिन वो भोजन जो है अभी मैंने खाई, मतलब हम खाते रोटी, और वो रोटी शरीर के अंदर जाके ब्लड में कैसे परिवर्तित हो जाती है, किस तरह से डाइजेशन होता है, वो उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता। किंतु जब जीव पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता है, और चूंकि परम सत्य सर्व पूर्ण है अतः यह स्वाभाविक है कि वह हर बात को विस्तार से जानता है। ऐसा पता है जन्ना जस्य यतोन तरादि तहतश चार्थेश्व विज्ञ, वो जो कुछ भी हो रहा है उस एक जर्रे जर्रे बात से, हर एक बात से विस्तार से जानते हैं उसको। पहले से वो पूर्ण पुरुष को श्रीमद्भागवतम में वासुदेव के नाम से अभिहित किया गया। जैसे पहले पहले लाइन में क्या कहा गया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो श्रीमद् भागवतम में जो परम पुरुष भगवान है उसको वासुदेव के नाम से बताया गया है, जिसका अर्थ है कि जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहता है। मतलब वो इतना शक्तिमान है कि कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी उसकी स्थिति है, वो स्थित रहता है, हर एक चीज में सर्वत्र रहता है। इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से हुई है और पाठक को इसका भली भांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। मतलब डिटेल से हमें श्रीमद् भागवतम में ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यावहारिक दर्शन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। व्यावहारिक दर्शन यानी कि आचरण के द्वारा करके दिखाया, ज्ञान के साथ विज्ञान प्रैक्टिकल करके बताया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की अहितु की कृपा से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। वरना तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाएं एकदम साधारण सी लगेंगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से हम उनके गुण रहस्य को समझ सकते हैं। अतः यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय लिया जा रहा है, जिससे पाठक को श्रीमद् भागवतम की असली महत्ता समझने में सहायता मिलेगी। हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमें कुछ पढ़ने को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम भागवतम पढ़ने से पहले चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनेंगे यह, और आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यह अनिवार्य है कि किसी भागवत व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवत सीखी जाए, यानी कि कोई भागवत भगवान का कोई भक्त होना चाहिए जिसे आप श्रीमद् भागवतम सीखते हो। भागवत व्यक्ति यह है जिसका जीवन ही व्यवहारतः श्रीमद् भागवतम हो, यानी कि वो भागवत भक्त। जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के भागवत होते हैं, एक तो शास्त्र भागवत और दूसरा भागवत भक्त भागवत यानी व्यक्ति भागवत। तो यहाँ पर बताया भागवत व्यक्ति वह है जिसका जीवन ही व्यावहारिक श्रीमद् भागवतम हो, यानी कि वो अपने व्यवहार में अपने जीवन में भागवत महापुराण के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन अनव्यतीत करता है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर है अतः वह साक्षात तथा ध्वनि यानी वाणी से भगवान तथा भागवत दोनों ही हैं। एक तो वो भगवान है क्योंकि साक्षात भगवान है और आचरण करते हैं एज इट इज श्रीमद् भागवत, तो वो भागवत भी हैं और भगवान भी हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहारणीय है। उन्होंने जो विधि बताई है तो वो एकदम प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदैव कहते हैं पृथ्वी से आते यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोरा नाम, यानी कि मेरे भगवान कहते थे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती थी कि जितने भी नगर और गाँव है वहाँ सर्वत्र हरि नाम का प्रचार, हरि कथा का प्रचार, भागवत का प्रचार होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है जिनके विषय में श्रीमद् भगवत गीता से प्रारंभिक सूचना मिलती है, यानी कि शुरू में हमें क्या पता चलता है कि भगवान कौन है वो उनके विषय में श्रीमद् भागवतम में प्रारंभिक सूचना मिलती है। जब तक हम भगवत गीता नहीं समझते तब तक कृष्ण को समझ नहीं सकते। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके साथ अपने प्रेम, श्रीमद् भगवद गीता से ये पता चलता है कि हमें अपना प्रेम विकसित करना है कृष्ण के लिए, और प्रेम विकसित कैसे करना है वो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान यानी श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में निपुण हो वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेश या शिक्षक हो सकता है। यानी कि ये दो शास्त्र के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता में निपुण हो, यानी कि उनके श्लोकों की व्याख्या कर सकता है, उसके विषय में बता सकता है, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक बन सकता है। उसको हक है कि वो शिक्षक बने और सबको ये सब चीजें बताए। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों यहाँ हम श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का प्रचार करें, क्योंकि संसार में दुखी लोग हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, तो उनके कल्याण के लिए कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। उस मानव समाज को सुरक्षित करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए जरूरी है कि कृष्ण विज्ञान को फैलाया जाए। सारे राष्ट्र के नेताओं से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हुए सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मतलब जितने भी राष्ट्रों के नेता हैं, उनके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा अनुरोध है, हम उनसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें, क्योंकि यही एकमात्र कल्याण है। बाकी सब लोग कल्याण के लिए सोचते हैं कि हमें अच्छा करना है, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन बताया जाता है कि जब तक कृष्ण विज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा जा सकता तब तक किसी भी जीव का कल्याण, भले हम कितनी भी सुविधाएं प्राप्त कर लें, कितनी भी आधुनिक तरक्की कर लें, कितनी भी भौतिक सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन कल्याण तभी प्राप्त होगा, कल्याण तभी होगा जब हम कृष्ण विज्ञान को अपनाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के संदेश आदर्शों को अपनाएंगे, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करेंगे और संपूर्ण मानव जाति इसी से अपने दुखों क्लेशों से दूर हो सकती है। तो कल से हम चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमद् भागवतम के जो प्रचारिक श्रीमद् भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आप सब साथ रहिएगा। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनना बहुत ही मंगलमय है। ये हमारा सौभाग्य है कि महाप्रभु के विषय में कुछ पढ़ने का हमें अवसर प्राप्त होगा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो कृपया आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।